पहला राजा अध्याय 12, अध्याय 12 पद 1। रहुबियाम तो शकेम को गया, क्योंकि सब इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। जो देश का लगभग केंद्र है, जो देश का हृदय है, वहां वे जमा हुए। अध्याय 12 पद 2 और 3। और जब नाबाद के पुत्र यरोबाम ने ये सुना, जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुला भेजा। तब यरोबाम और इसराइल की समस्त सभा रहुबियाम के पास जाकर यो कहने लगी, जब तुम्हारा पिता जीवित था, उसने हम पर अधिक कर लगाए और हम कर देते देते थक गए हैं। अब हमें छूट चाहिए। इसलिए रहुबियाम ने कहा, मुझे सोचने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। तब वो अपने पुराने सलाहकारों के पास गया, जो उसके पिता के भी सलाहकार रहे थे। उसने पूछा, मैं क्या करूं? और उन्होंने सलाह दी, बेहतर होगा तुम उनकी बात मानकर उन्हें कुछ छूट दे दो। वे लोग जो कह रहे हैं वो ठीक ही है, कर भारी है। यदि तुम छूट ना दोगे तो लोग विरोध करेंगे। फिर वो जवान सलाहकारों के पास गया, जिनके साथ वो बड़ा हुआ था। उसने कहा, देखो लोग कर में छूट मांग रहे हैं, हम क्या करें? उन्होंने कहा, उनकी विनती पर ध्यान मत दो। यदि तुमने ऐसा किया तो वे दोबारा और याचना लेकर आएंगे। इसलिए तुम्हें कड़क होना है और जाकर कहो, अभी तुमने कुछ नहीं देखा है, तुम मुझे अपने पिता से अधिक पाओगे। वास्तव में मेरे पिता के समय तुमने कुछ नहीं सहा है जो अब सहोगे। इसलिए उसने बाहर जाकर कठोरता से उनसे बातें की। उसने कहा, मेरे पिता ने कोड़ों की पीड़ा दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं की पीड़ा दूंगा। तब लोगों ने कहा, दाऊद के परिवार के साथ हमारा क्या अंश? और कहा, हे इसराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इस तरह इसराइल के गोत्रों ने उस समय विद्रोह किया। और जब रहुबियाम ने सुना कि लोग गुस्से में हैं, वो यरूशलेम में सुरक्षित स्थान को चला गया। वहां उसने सेना इकट्ठी की, परंतु परमेश्वर ने कहा, इस समय युद्ध के लिए मत जा। और उसका राज्य 2 भागों में बट गया। और ये समय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय हो गया। उत्तरी राज्य, जैसे मैंने कहा, इसराइल कहलाया। दुर्भाग्य से उनके पास एक अच्छा राजा नहीं था। इसराइल आरंभ से ही मूर्ति पूजा में फंस गया। यहूदा के कुछ अच्छे राजा थे, कुछ सर्वश्रेष्ठ और कुछ बुरे। इसराइल में कभी अच्छा राजा नहीं हुआ, वे बुरे से और बुरे हो गए। परंतु यहूदा में कुछ अच्छे राजा हुए, जिन्होंने यहूदा में सुधार किया। परंतु ये दोनों राज्य फिर एक नहीं हुए। उत्तरी राज्य अशूरों द्वारा घिराया गया। फिर 587 ईसा पूर्व दक्षिणी राज्य बाबुल के द्वारा गिराया गया। बाबुल की बंधुआई के बाद वे फिर से इकट्ठे हुए, परंतु यहूदा के लोग समरिया के लोगों को भाई की तरह कभी स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि समरिया वाले अपनी वंशावली को कभी प्रमाणित नहीं कर पाए कि वे यहूदी थे। मसीह के समय में भी यहूदियों और सामरियों में गहरा विभाजन था। दोनों ही दावा करते थे कि उनके पास परमेश्वर की उपासना करने का उचित स्थान है। समरिया में, जहां इब्राहिम ने सबसे पहले शकेम में परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, जबकि यहूदी कहते थे, नहीं, परमेश्वर की उपासना मोरिया पर्वत पर यरूशलेम में की जानी चाहिए। ये मतभेद दोनों में यीशु के समय तक रहा। हम एहेस्केल की भविष्यवाणी को आज पूरा होते देख रहे हैं। उसने इसराइल की पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी की थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर सूखी और बिखरी हड्डियों को इकट्ठा करेगा और देश में लाकर उनसे एक राज्य बनाएगा। उसने कहा कि उसने एक छड़ी यूसुफ की ओर, एक छड़ी यहूदा को देखी थी। अंत में वो दोनों राज्य एक ही होंगे। इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने 1948 में पूरा किया और फिर दो राज्य ना होंगे, अर्थात उत्तर और दक्षिण के दो राज्य अलग ना होकर एक इसराइल राष्ट्र होगा। आज ऐसा ही है। इसराइल संयुक्त राज्य है और एक ही शासक पूरे देश पर राज्य कर रहा है। दो पृथक राज्य अब इतिहास की बीती बात हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वे एक राज्य होंगे। जोसेफ स्मिथ ने कहा कि एक छड़ी यूसुफ के लिए थी। ये वास्तव में उसका नाम है और वो छड़ी मॉर्मोन्स की पुस्तक है जिसे जोसेफ स्मिथ सब लोगों तक पहुंचा रहा है। यदि आप उसकी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं तो आप किसी भी बात पर विश्वास कर सकते हैं। मुझे ये देख आश्चर्य होता है कि लोग ऐसी झूठी शिक्षा के पीछे जाते हैं। यरोबाम इसराइल का राजा हो गया और उसने शकेम का निर्माण किया। शकेम तो पहले ही था। इसका अर्थ है कि उसने शकेम के चारों ओर शहरपना बनाई और यही दीवार आज भी खंडर रूप में वहां है। परंतु उसने स्वयं से कहा कि लोग पर्व मनाने यरूशलेम जाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि उनका मन यहूदा में लग जाए और वे मुझे छोड़ यहूदा के राजा के पीछे हो ले। यदि ऐसा हुआ तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। इसलिए उसने दो सोने के बछड़े बनाए और वेदियां बनाई। एक उसने दान में रखी जो थोड़ी दूर राज्य के उत्तरी भाग के किनारे पर है। यहीं से यर्दन नदी पृथ्वी से निकलती है। ये दान का एक रमणीय स्थल है। दूसरा उसने बेतेल दक्षिणी भाग में लगाया जो यरूशलेम से 15-20 मील दूर है। इस तरह इसराइल राज्य के दोनों ओर दक्षिण और उत्तरी भाग में उसने सोने की एक मूर्ति स्थापित की और उसने कहा, ये वे ईश्वर हैं जो तुम्हें मिस्र देश से निकालकर ले आए। बछड़ों की उपासना मिस्र से ही उनके साथ आई थी। आपको याद होगा जब इसराइल की संतान जंगल में थी और मूसा को पर्वत पर बहुत समय लग गया था, तब लोगों ने ये सोचकर कि अब वो वापस नहीं आएगा, लोगों ने हारून के पास आकर कहा, हमारे लिए ईश्वर बना कि हम उसकी सेवा करें, क्योंकि मूसा को क्या हुआ हम नहीं जानते। उसने उनसे अपना सब सोना लाने को कहा और उसे गलाकर बछड़ा बनाया। मूसा पर्वत से आज्ञाओं की दो तख्तियां लिए हुए उतरा और उसने नाचने और गाने और कोलाहल का शब्द सुना। लोग सोने के बछड़े की उपासना और मदिरा पान में मस्त थे। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला, जिस पर परमेश्वर ने खोद कर 10 आज्ञाएं लिखी थी। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। और यहां वे लोग पहले दो आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने आज्ञा के मिलने से पहले ही आज्ञा को तोड़ा। मूसा ने तख्तियों को भूमि पर फेंक दिया और तोड़ दिया। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़ों को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और वो पानी इसराइलियों को पिलाया था। वो मूर्ति पूजा के साथ कठोरता से पेश आया था। परंतु यहां यरोबाम ने दो बछड़े बनवाए, उन्हें वेदी पर स्थापित किया और कहा, ये वे ईश्वर हैं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लाए। और उसने लोगों के हृदयों को प्रभु से दूर कर दिया।